ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा की विशेष बातचीत।
हमारा देश एक नया भारत की सोच के साथ वुमेन डेवलपमेंट अप्रोच से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा छलांग नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। इसके अलावा मिशन शक्ति, सुकन्या समृद्धि योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे बहुत सारे स्कीम पे सरकार काम कर रहे हैं। इस सारे स्कीम्स के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हमारे साथ है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले मैं आपसे केंद्रीय बजट के बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है, इस प्रोविजन को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये इस बार जो केंद्रीय बजट आया है, इसके लिए तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार कि इस बार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। और इसमें हम देखें तो 13-14 में जेंडर बजटिंग लगभग 97 करोड़ रुपए थे, जिसकी तुलना में अभी इस बार बजट में 236.8% की बढ़ोतरी करते हुए ये 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट का प्रावधान किया गया है। और 23-24 की जेंडर बजट स्टेटमेंट में हम देखें तो लगभग 37% की वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार उनका ये फोकस रहा है महिलाओं को कैसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें कैसे और आगे बढ़ाया जा सके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में उन्होंने बहुत बड़ी छलांग के साथ 336% से ज्यादा का ये बजट में बढ़ोतरी का प्रावधान हुआ है। और इसमें हम फिर देखें तो बाल विकास मंत्रालय को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं में भी गति मिलेंगी। महिला से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से ये चूंकि हमारे नीचे स्तर तक ये एक संस्था है जहाँ पे हमारे बच्चे 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे वहाँ पे उनकी देखरेख उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, तो इस सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से हम बेहतर बच्चों के देखरेख कर सकें, उसके लिए लोगों को गाइडलाइन देना, उसके साथ ही साथ बच्चों के पोषण के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना और इसके साथ किशोरियों का, गर्भवती माताओं का, धात्री का, तो इस सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से एक विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसमें हमारे जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और इसके माध्यम से हमारे बच्चों को जो आज ये आवश्यकता भी है कि हम कुपोषण मुक्त भारत की हम बात करते हैं, हमारे बच्चे सुपोषित हों, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, इसके लिए भी विशेष फोकस किया जा रहा है।
आपकी मंत्रालय ने हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन शुरू किया था, इसके बारे में हमारी श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दीजिए।
पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम ये अभी हमारा सितंबर महीने से एक पोषण माह की शुरुआत होने जा रही है। इसके माध्यम से हम जागरूकता अभियान चलाकर हमारे बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार देना है, तो इसके लिए एक विशेष कैंपेन जागरूकता भी होगी और सही ढंग से बच्चों को पोषण के साथ साथ अन्य सारी सुविधाओं के लिए भी महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चे आते हैं, तो ये एक हमारा मैंडेट है कि हम बच्चों को पोषण के साथ साथ पढ़ाई, यानी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE के बारे में भी जिक्र किया गया है, तो उसके तहत हम बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो वर्कर हैं हेल्पर है उनके वर्कर के माध्यम से हमारा गाइडलाइन में बना हुआ है विभाग की ओर से कि हम बच्चों को खेल खेल में कैसे हर एक चीजों की जानकारी दें, उनको पढ़ाई भी उनका संख्यात्मक ज्ञान उस के माध्यम से हम कराएं, तो इसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। और ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे यानी कि हम प्रत्येक आंगनबाड़ी जो लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है उसके माध्यम से ये हमारा एक बड़ा कैंपेन ये चल रहा है और इससे बहुत फायदे भी हो रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं लगभग 8.5 करोड़ बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र आने वाले हैं तो उनको भी एक बेहतर सुविधाएं मिल रही है।
मैम जब आप अभी आंगनवाड़ी के बारे में अभी बात करें तो देश में जो क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज है उसको सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जा रहा है। क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए।
ये कामकाजी माताओं और बच्चों के देखरेख के लिए हम डे केयर क्रेच की सुविधाएं हम प्रदान करते हैं और भारत सरकार ने पालना के माध्यम से ये डे केयर की सुविधाएं प्रदान करने का एक निर्णय लिया है और उसके माध्यम से ताकि आंगनवाड़ी केंद्र में क्रेच की सुविधाएं हो ताकि महिलाएं उस सेंटर में जाके अपने बच्चों को रखकर महिलाएं काम में वो जा सकते हैं, तो इसके लिए भी फोकस भारत सरकार की ओर से किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये अभी हमारा जो 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें हम अंतिम माइल तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हम काम कर रहे हैं और ये एक विशेष हमारा फोकस भी है कि हम क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराकर कामकाजी महिलाओं को, जो एक महिला ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी हो सके, इसके लिए भी ये एक हमें लगता है मील का पत्थर साबित होगा और इसमें महिलाओं को बेहतर ढंग से सुविधाएं भी देने के लिए भारत सरकार इसमें प्रयासरत है।
महिलाओं में स्किल्स को बढ़ाने और इनकम अपॉर्चुनिटी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी मंत्रालय कैसे अन्य विभागों के साथ योजनाओं पर काम कर रहा है?
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपनी ये उनकी अपेक्षा भी है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो इसके लिए हम कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से भी और विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से ये एक जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये मंत्रालय काम कर रही है और साथ ही साथ अभी अगर हम देखें तो 5 वर्ष में लगातार लड़कियों का उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो GER है पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है और लड़कियों की शिक्षा में भी भागीदारी बढ़ी है। श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए हम उनको कौशल विकास के अधिक अवसर प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 15-16 में लड़कियों की भागीदारी लगभग 42.7% थी जो 23-24 में बढ़कर अब 52.3% हो गई है। पीएम जनधन योजना के माध्यम से देखें तो कुल खाता लगभग 55.6% खाता जो महिलाओं के नाम से खुली है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 8.90 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और ये महिलाएं अपने परिवार का बहुत ये सहारा बन रही है। सरकार छोटे छोटे व्यवसायियों को भी मदद कर रही है जिसमें मुद्रा योजना के तहत लगभग 68% से ज्यादा महिलाओं को उसमें ऋण मिला है और अब 10 लाख से ये बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया की बात अगर करें तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत हुए हैं और उसमें से 78% हमारी महिलाएं हैं। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी गांव में है और वो एक बिल्कुल समर्पित सिपाही की तरह गांव में वो काम कर रही है। और इसके साथ हमारे विभाग की ओर से, महिला बाल विकास विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के एक घटक उसका सामर्थ्य है। सामर्थ्य के तहत हम संकल्प फॉर हब फॉर एम्पावरमेंट, संकल्प है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, जिसके तहत एक ही छत के नीचे महिलाओं को हर योजना की जानकारी, चाहे वो भारत सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, उनकी जानकारी मिल जाती है और कार्य करने का उनको डायरेक्शन भी मिल जाता है किस तरह से वो काम या कहां से वो कर सकती हैं। इसकी पूरी जानकारी एक ही छत के नीचे ये मिलता है तो जिसके माध्यम से भी महिलाओं को अब बहुत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनको जब जानकारी लेनी होती है तो वो फिर हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में वो जाती हैं और वहां पे वो इसके बारे में जानकारी लेती है। उसके साथ ही लगभग 35 प्रदेशों में और केंद्र शासित राज्यों में लगभग 700 से ज्यादा जिलों में HEW ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित भी हो रहे हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं के समेकित विकास के लिए भी ये योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं।
वर्क प्लेस पर महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े और उनकी सुरक्षा भी तय हो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ आपकी मंत्रालय किस तरह से नीतियों को बना रहा है?
वर्क प्लेस पे आज जरूरत है कि हम कैसे महिलाओं को सुरक्षा दे सके, कैसे हमारी महिलाओं की वर्क फोर्स में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके, इसके लिए भारत सरकार नीति बना रही है। और आपने देखा कि भारत में जो G20 सम्मेलन अभी संपन्न हुआ, उसमें मुख्य एजेंडे में महिलाओं के नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमुखता से स्थान दिया गया। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम देश को आगे बढ़ाएं। तो इस दिशा में हमारा विभाग दूसरे मंत्रालय से मिलकर प्राणपण से काम भी कर रहा है। 17-18 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी मात्र 23% थी, 23-24 में बढ़कर 37% हो गई है। और कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए लगातार हम बजट बढ़ भी रहा है, बढ़ोतरी भी हो रहा है। और उसके साथ साथ बजट में उद्योगों के सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इस बार भी आंगनवाड़ी सक्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को आगे बढ़ाना ही है। और महिला सुरक्षा हमारी सरकार की अग्रिम प्राथमिकताओं में भी है। सरकार ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रभावकारी कदम भी उठाए हैं, जिसमें निर्भया फंड से महिला सुरक्षा से संबंधित लगभग 7212 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं, जिसमें कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों को अगर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, हेल्पलाइन नंबर 181 को ज्यादा सशक्त और प्रभावकारी बनाना, और ये लगभग 24/7 यानी आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता भी प्रदान करता है। ये हमारा प्रयास है कि हम इसको बेहतर कर सके। और उसके साथ ही मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में जैसे संशोधन किया गया, जिसमें प्रत्येक महिला कर्मी को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर उसे 26 सप्ताह कर दी गई है। निर्भया फंड से महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अब तक 7212 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, जिसमें कार्यस्थलों पर महिला सहकर्मियों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्स अधिनियम को कड़ाई से लागू किया गया है। और इसलिए हर जगह चाहे महिला श्रम बल में भी महिलाओं की भागीदारी अभी बेहतर हो रही है।
नए आपराधिक कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर विशेष फोकस है। इस कानून के लागू होने से आपकी मंत्रालय अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं?
नए कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को दी गई है। उसकी उसमें हम नया जिसमें कि कई संशोधन उसमें जो हुए हैं, जिसमें 35 धाराएं और 13 प्रावधान है, इसे जोड़कर काफी संवेदनशील इसे बनाया गया है। और इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दिया गया है, और देरी की जगह त्वरित ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा, और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। नए कानून में 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधियों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, और इससे न्याय जल्दी मिलेगा। नए आपराधिक कानून के तहत महिला और किशोर किशोरियों से संबंधित अपराधों में सजा में सख्ती की गई है। अब दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की जांच की जिम्मेवारी महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसी तरह शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में भी अपडेट देना होगा। और उसके साथ ही नए कानून में कई ऐसे अपराध करने वाले लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो, ये एक व्यवस्था की गई है। और भारत की महिला और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्पण को दर्शाती है, जिसमें लैंगिक समानता और बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और विकास पर जोर दिया जा सके।
आप हमारे स्टूडियो आए, हमें बहुत सारी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।